हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इतनी जल्दबाजी किस बात की है तुम्हें? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अगर अभी गिर जाती तो क्या होता, इसका अंदाज़ा भी है तुम्हें? आयुष्मान की आवाज़ में गुस्सा झलकने लगा था। प्रीति ने चौंकते हुए उसे देखा और उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, मैं तो आपके पास आ रही थी ये देखने कि आपको दोनों चीज़ें मिली या नहीं। मुझे थोड़े पता था कि सामने से आप आकर मुझसे टकरा जाएंगे। उसकी मासूम सी शक्ल देखकर आयुष्मान चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं कर सका। उसने अपना चेहरा घुमा लिया और गहरी सांस छोड़ते हुए खुद को शांत किया। फिर प्रीति की तरफ मुड़ते हुए हल्की नाराज़गी से बोला, ये तुम्हारे वजह से हो रहा है। पहले अच्छा खासा मैं अपनी हर चीज़ खुद संभालता था, पर तुमने मेरी आदत बिगाड़ दी है। अब हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए मुझे तुम पर डिपेंड होना पड़ता है। अगर मैंने फ़ाइल खुद रखी होती तो तुमसे पूछना ही नहीं पड़ता और न ही ये टक्कर होती। आयुष्मान की ये बात सुनकर प्रीति के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और आयुष्मान को घूरते हुए बोली, हाँ, अभी तो अगर दुनिया में प्रलय भी आया होता तब भी आप उसके लिए मुझे ही ब्लेम करते कि मैं आपकी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। बस इसलिए भगवान कुपित हो गए और गुस्से में दुनिया ही ख़त्म कर दी। पर मैं आपको बता दूँ कि मैं कोई अनोखा काम नहीं कर रही हूँ। दुनिया के 95% शादीशुदा जोड़ों में पत्नी ही पति की चीज़ों का ध्यान रखती है और उनके पति इस बात पर आपके तरह ताने नहीं मारते और न ही गुस्सा करते हैं, बल्कि खुश होते हैं। पर आप आम लोगों में कहाँ आते हैं? आपको तो मेरे एफर्ट्स नज़र ही नहीं आते। मैं आपके लिए कुछ भी कर दूं पर आपको कदर ही नहीं उसकी। मैं कितनी ही कोशिश कर लूं एक अच्छी वाइफ बनने की, पर आपको बस कमियां दिखती हैं मुझ में, कदर ही नहीं आपको मेरी फीलिंग्स और एफर्ट्स की। खैर, मेरा अब आपसे सुबह सुबह और बहस करने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मुझे कोसने से आपको फुर्सत मिल गई हो तो चलकर नाश्ता कर लीजिए, फिर और भी काम करने हैं मुझे। प्रीति ने चिढ़ते हुए पूरी बात कही और मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। आयुष्मान बस उसे देखता ही रह गया। प्रीति बड़बड़ाते हुए वापस किचन में चली गई। कुछ देर बाद वो हाथ में एक प्लेट लेकर बाहर आई और एक नज़र आयुष्मान को देखने के बाद प्लेट टेबल पर रख दी। आयुष्मान उसकी आंखों के इशारे समझ चुका था और साथ ही उसके खामोश नाराज़गी को भी भांप गया था। वो आकर सोफे पर बैठ गया। प्रीति ने उसे देखा और मुंह बनाते हुए वहां से जाने लगी। तभी उसके कानों में आयुष्मान की आवाज़ पड़ी, तुम खाना नहीं खाओगी? नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, प्रीति ने बेरुखी से जवाब दिया और जाने के लिए कदम आगे बढ़ाया, पर आयुष्मान ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। प्रीति, आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा रिएक्ट कर गया, पर मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद था। अगर आज तुम गिर जाती तो, बस यही सोचकर थोड़ा गुस्सा आ गया था। पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी कोशिशें नज़र नहीं आती या तुम्हारा मेरे छोटे छोटे काम करना, मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। कदर है मुझे तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद ही मेरी ज़िंदगी का अकेलापन दूर हुआ है। तुम्हारे एफर्ट्स नज़र आते हैं मुझे और मैं सराहता हूँ तुम्हें। तब ज़्यादा पैनिक कर गया था मैं, गलती तुम्हारी नहीं थी, मुझे देखकर चलना चाहिए था। अब तो अपनी नाराज़गी छोड़ दो और मेरी गलती की सज़ा खुद को और खाने को न देते हुए मेरे साथ खाना खा लो। आयुष्मान का सहज व्यवहार, उसका इतने शालीनता से अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफ़ी मांगना प्रीति की सारी नाराज़गी को दूर कर गया, साथ ही उसे भी अपनी गलती का एहसास दिला गया। वो आयुष्मान की तरफ पलट गई, सारी गलती आपकी भी नहीं थी, अपनी कंडीशन जानते हुए मैं ही लापरवाही दिखा रही थी और बिना सामने देखे चल रही थी, पर मैंने भी इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। मैं बस जल्दी से आपके पास पहुँचना चाहती थी और उसी में गड़बड़ हो गई। फिर मैंने बेवजह आपको इतना सुना भी दिया, सॉरी मेरे तरफ से भी, एंड आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं दिखाऊंगी। प्रीति का एक हाथ अब भी आयुष्मान ने पकड़ा हुआ था। उसने माफ़ी मांगते हुए दूसरे हाथ से अपने कान को पकड़ लिया और मासूम सी शक्ल बनाकर उसे देखने लगी। आयुष्मान उसकी बात सुनकर और उसकी ये अदा देखकर मुस्कुरा उठा, फिर उसके कान पर से हाथ हटाते हुए मुस्कुरा कर बोला, इट्स ओके, गलती हम दोनों की ही थी और हम दोनों को आगे ध्यान रखना होगा कि ऐसा दोबारा ना हो। हम प्रीति ने तुरंत हां में सर हिला दिया, फिर आयुष्मान को देखकर आगे बोली, पर मैं अभी आपके साथ खाना नहीं खा सकती, आज सोसाइटी में कीर्तन है तो कुछ देर में मुझे मंदिर जाना है, अगर खा लूंगी तो पूजा आरती नहीं कर सकूंगी, इसलिए मैं कीर्तन से आने के बाद खाना खाऊंगी। प्रीति की ये बात सुनकर आयुष्मान के चेहरे के कोमल भाव एक बार फिर कठोर हो गए और उसने सख्त निगाहों से प्रीति को घूरते हुए भौं उचकाते हुए सवाल किया, और तुम्हारा ये कीर्तन कब तक चलेगा? 9 से 11 का टाइम है और तुम 11 बजे तक भूखी रहने वाली हो। एक बार फिर आयुष्मान भौं सिकोड़ उसे देखने लगा। प्रीति ने हां में सर हिला दिया, पर इससे पहले कि आयुष्मान कुछ कहता वो आगे बोल पड़ी, आप इसके लिए गुस्सा नहीं करेंगे, मेरा बहुत मन है कीर्तन में जाने का और बस 11 बजे तक की बात है, उसके बाद मैं पक्का खाना खा लूंगी। आयुष्मान कुछ कहने वाला था पर चुप रह गया। उसने नाश्ता किया, फिर प्रीति को वक्त पर खाना खाने और दवाई लेने को कहकर ऑफिस के लिए निकल गया। आज मेट के आने से पहले ही प्रीति ने सारा काम कर लिया और नहा कर तैयार होकर घर में पूजा करने के बाद नीचे कीर्तन में चली गई। ठीक 11 बजे आयुष्मान का फोन आया, पर प्रीति ने दूर जाकर उससे झूठ कह दिया कि उसने खाना खा लिया और वापस कीर्तन में आकर बैठ गई। 11:30 बजे कीर्तन खत्म हुआ तो प्रीति प्रसाद लेकर घर चली आई और खाना खाकर दवाई खाकर आराम करने लेट गई।